पद 40, संख्या 29 का गुप्त इतिहास, यहेज़केल संख्या 10।
यहेज़केल की पुस्तक में अनेक अद्भुत और महत्वपूर्ण भविष्यद्वाणी संबंधी रेखाएं और सत्य पाए जाते हैं। मंदिर के भीतर नबियों के बाइबिलीय चित्रणों में सबसे बढ़कर यही यहेज़केल है, जो पहियों के भीतर पहियों की पहचान कराता है। वे पहिए सिस्टर वाइट के अनुसार मानवीय गतिविधि की उस जटिल पारस्परिक क्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पिछली वर्षा के समय की घटनाओं के क्रम को चित्रित करती है। उन घटनाओं का प्रतिनिधित्व नबी द्वारा तब किया गया जब वह एक अभिव्यक्त दृष्टांत में स्वयं भविष्यद्वाणी का भाग बन गया, जैसे कि जब यहेज़केल यरूशलेम की घेराबंदी के चौथे अध्याय के चित्रण में अपनी बाईं और फिर दाईं करवट लेटता है। 13 विशिष्ट तिथियां भी हैं जो यहेज़केल के इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं, और ऐसा करते हुए वे पिछली वर्षा की अवधि के मार्ग चिन्ह प्रदान करती हैं जब 144,000 पर मोहर लगाई जाती है। सत्य केवल तिथियों के माध्यम से ही नहीं, वरन 17, 19, 25, 70, 40, 390 और निस्संदेह 30 जैसी संख्याओं के माध्यम से भी संप्रेषित किए गए हैं। एक और संख्या जो संभवतः यहेज़केल की पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण संख्या है, वह 150 है। तो भी 150 की संख्या यहेज़केल की पुस्तक में पाई नहीं जाती, फिर भी पंक्ति पर पंक्ति वह वहां है।
150 संख्या भविष्यवाणी की दृष्टि से घेराबंदी की रेखा के भीतर निहित है, और घेराबंदी एक विशिष्ट भविष्यदर्शी रेखा है, अथवा यदि आप चाहें तो घेराबंदी एक पहिया है। इतिहास की एक भविष्यदर्शी रेखा में सदैव एक अल्फा और एक ओमेगा होता है, और ऐसा होने पर अल्फा और ओमेगा की विशेषताएं उस रेखा के आरंभ और अंत में अवश्य प्रकट होनी चाहिए, अन्यथा वो रेखा नहीं है। घेराबंदी की अल्फा घटना यहेज़केल की पत्नी की मृत्यु थी, और घेराबंदी का अंत मसीह की दुल्हन की मृत्यु था, जैसा कि यरूशलेम के विनाश द्वारा निरूपित किया गया है।
और मैं यूहन्ना ने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग में से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, जो अपने पति के लिए सजी हुई दुल्हिन के समान तैयार किया गया था। और मैंने स्वर्ग में से एक बड़ा शब्द ये कहते सुना, देखो परमेश्वर का तंबू मनुष्यों के साथ है, और वो उनके साथ वास करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और उनका परमेश्वर होगा, और परमेश्वर उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और फिर मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रहीं। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। और उसने मुझसे कहा, लिख, क्योंकि ये बातें सत्य और विश्वास योग्य हैं। और उसने मुझसे कहा, हो चुका, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। जो प्यासा है उसे मैं जीवन के जल के सोते में से सेंध में दूंगा। जो जय पाए वही इन बातों का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वो मेरा पुत्र होगा। पर जो डरपोक और अविश्वासी और घिनौने और हत्यारे और व्यभिचारी और टोनहे और मूर्ति पूजक और सब झूठे हैं, उनका भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यही दूसरी मृत्यु है। फिर उन 7 स्वर्गदूतों में से एक, जिसके पास 7 कटोरे थे जो 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए थे, मेरे पास आया और मुझसे बातें करके कहने लगा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हिन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 21:2-9।
घेराबंदी के आरंभ में यहेज़केल की पत्नी मर जाती है, और वहां उसकी पहचान यहेज़केल की आंखों की अभिलाषा के रूप में की गई है। और उसी अध्याय में वर्णित यरूशलेम के विनाश में यरूशलेम की पहचान इज़राइल की आंखों की अभिलाषा के रूप में की गई है।
फिर 9वें वर्ष में 10वें महीने के 10वें दिन यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, और उसने कहा, फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा कि हे मनुष्य के संतान, देख मैं एक ही आघात से तेरी आंखों की अभिलाषा को तुझसे दूर कर लेता हूँ, तो भी तू न विलाप करना और न रोना और न तेरे आंसू बहने पाएं, चुपचाप कराहना, मरे हुओं के लिए शोक न करना, अपनी पगड़ी अपने सिर पर बांधे रखना और अपने पावों में जूते पहने रखना और अपने होंठ न ढांपना और मनुष्यों की दी हुई रोटी न खाना। तब मैंने बिहान को लोगों से बातें की और संध्या को मेरी पत्नी मर गई, और मैंने भोर को वैसा ही किया जैसा मुझे आज्ञा दी गई थी। तब लोगों ने मुझसे कहा, क्या तू हमें न बताएगा कि ये बातें हमारे लिए क्या अर्थ रखती हैं कि तू ऐसा करता है? तब मैंने उन्हें उत्तर दिया, यहोवा का वचन मेरे पास आया ये कहता हुआ इसराइल के घराने से कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैं अपने पवित्र स्थान को अशुद्ध करूंगा, जो तुम्हारी शक्ति की महिमा है, तुम्हारी आंखों की अभिलाषा है और जिस पर तुम्हारा प्राण तरस खाता है, और तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां जिन्हें तुम पीछे छोड़ आए हो तलवार से गिरेंगे, और तुम वही करोगे जो मैंने किया है, न तुम अपने होंठ ढाकोगे और न मनुष्यों की रोटी खाओगे, और तुम्हारी पगड़ियां तुम्हारे सिरों पर होंगी और तुम्हारे जूते तुम्हारे पैरों में, तुम न विलाप करोगे और न रोओगे, परंतु तुम अपने अधर्मों के कारण क्षीण होते जाओगे और एक दूसरे की ओर देखकर कराहोगे। इस प्रकार यहेजकेल तुम्हारे लिए एक चिन्ह ठहरेगा, जो कुछ उसने किया है उसके अनुसार तुम भी करोगे, और जब ये घटित होगा तब तुम जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूँ। और हे मनुष्य के संतान, क्या ऐसा उस दिन न होगा जब मैं उनसे उनका बल, उनके वैभव का आनंद, उनकी आंखों की अभिलाषा और वो जिस पर उनका मन लगा रहता है, अर्थात उनके पुत्रों और उनकी पुत्रियों को छीन लूं? और क्या उस दिन जो बच निकलेगा वो तेरे पास आकर तुझे ये तेरे ही कानों से सुनाने न पाएगा? उस दिन जो बच निकला होगा उसके लिए तेरा मुंह खुल जाएगा और तू बोलेगा और फिर गूंगा न रहेगा। इस प्रकार तू उनके लिए एक चिन्ह ठहरेगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यहेजकेल 24:1-15-27।
घेराबंदी का अल्फा यहेजकेल की अभिलाषा की मृत्यु है और ओमेगा इसराइल की अभिलाषा की मृत्यु है।
सुनते हुए भी न सुनना।
5 अवसर ऐसे हैं जब प्राचीनों या लोगों को किसी न किसी प्रकार से यहेजकेल की सुनते हुए दर्शाया गया है। यहेजकेल 8:1 में यहूदा के प्राचीन उसके सामने बैठे हैं। यहेजकेल 14:1 में प्राचीन आकर उसके सामने बैठते हैं। यहेजकेल 20:1 में इसराइल के प्राचीन यहोवा से पूछने के लिए आते हैं। यहेजकेल 37:18 में परमेश्वर यहेजकेल से कहता है, जब तेरी प्रजा के संतान तुझसे यह कहकर बोलें, क्या तू हमको यह न बताएगा कि इन बातों से तेरा क्या अभिप्राय है? 24वें अध्याय में लोग सीधे पूछते हैं, क्या तू हमको न बताएगा कि ये बातें हमारे लिए क्या हैं जो तू ऐसा करता है? इन 5 उदाहरणों में प्राचीन या लोग लौदीकिया की दशा में हैं।
और उसने कहा, जा और इस प्रजा से कहे, तुम सुनते तो रहो परंतु समझो नहीं, और देखते तो रहो परंतु बूझो नहीं। इस प्रजा के हृदय को मोटा कर दे और उनके कानों को भारी कर दे और उनकी आंखें बंद कर दे, ऐसा न हो कि वे अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और अपने हृदय से समझें और फिर जाएं और चंगे हो जाएं। यशाया 6:9-10।
लोगों के सुनते हुए भी न सुनने के 5 निरूपण और लोगों के देखते हुए भी न देखने के 5 निरूपण यशायाह की साक्षी में उन लोगों के 5 चरणों के अनुरूप हैं जो देखने और सुनने से इनकार करते हैं।
परंतु यहोवा का वचन उनके लिए आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, पंक्ति पर पंक्ति, पंक्ति पर पंक्ति, यहाँ थोड़ा और वहाँ थोड़ा ठहरेगा, ताकि वे जाकर पीछे की ओर गिरें और टूट जाएं और फंसें और पकड़ लिए जाएं। यशायाह 28:13। और उनमें से बहुत से ठोकर खाएंगे और गिर पड़ेंगे और टूट जाएंगे और फंदे में फंस जाएंगे और पकड़ लिए जाएंगे। यशाया 8:15।
चिन्ह यहेजकेल के 24वें अध्याय में घेराबंदी के आरंभ और यहेजकेल की पत्नी जो उसकी आंखों की अभिलाषा थी कि मृत्यु से प्रारंभ होने वाला काल यरूशलेम जो इसराइल की आंखों की अभिलाषा था कि मृत्यु पर समाप्त होता है। 1.5 वर्ष की ये घेराबंदी अल्फा और ओमेगा की मोहर को समाहित किए हुए है और ये काल एक चिन्ह से आरंभ होता है और एक चिन्ह पर समाप्त होता है। जैसे यहेजकेल 24 में है वैसे ही यीशु मत्ती 24 में घेराबंदी के चिन्ह की पहचान कराते हैं।
मसीह के वचन बहुत बड़ी संख्या में लोगों के सुनते सुनते कहे गए थे, परंतु जब वह अकेले थे तब पतरस, यूहन्ना, याकूब और अन्द्रियास उनके पास आए जब वह जैतून के पर्वत पर बैठे थे। उन्होंने कहा, हमें बताइए ये बातें कब होंगी और तेरे आगमन तथा जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने अपने चेलों को यरूशलेम के विनाश और अपने आगमन के महान दिन के विषय में अलग अलग करके उत्तर नहीं दिया। उसने इन दोनों घटनाओं के वर्णन को परस्पर मिला दिया। यदि वो अपने चेलों के सामने भावी घटनाओं को वैसे ही खोल देता जैसे वो उन्हें स्वयं देख रहा था, तो वे उस दृश्य को सहन करने में असमर्थ होते। उन पर दया करते हुए उसने इन दो महान संकटों के वर्णन को एक साथ मिला दिया और चेलों के लिए ये छोड़ दिया कि वे उसका अर्थ स्वयं समझें। जब उसने यरूशलेम के विनाश का उल्लेख किया, तब उसके भविष्य सूचक वचन उस घटना से आगे बढ़कर उस अंतिम महादाह तक पहुंच गए, उस दिन तक जब प्रभु अपने स्थान से निकलकर पृथ्वी के निवासियों को उनके अधर्म के कारण दंड देने के लिए उठ खड़ा होगा, जब पृथ्वी अपना लोहू प्रकट करेगी और अपने घात किए हुओं को फिर कभी न ढापेगी। ये समस्त उपदेश केवल चेलों के लिए ही नहीं, वरन उनके लिए भी दिया गया था जो पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दृश्यों में जीवित होंगे। शिष्यों की ओर मुड़कर मसीह ने कहा, सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमा न दे, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत से झूठे मसीहा प्रकट होंगे जो ये दावा करेंगे कि वे चमत्कार करते हैं और ये घोषणा करेंगे कि यहूदी जाति के उद्धार का समय आ पहुंचा है। वे बहुतों को भ्रमित करेंगे। मसीह के वचन पूरे हुए, उनकी मृत्यु और यरूशलेम की घेराबंदी के बीच बहुत से झूठे मसीहा प्रकट हुए, परंतु ये चेतावनी उन लोगों को भी दी गई थी जो संसार के इस युग में रहते हैं। यरूशलेम के विनाश से पहले जो वही छल किए गए थे वे युगों युगों तक किए जाते रहे हैं और फिर किए जाएंगे। और तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे, सावधान रहो, घबराना मत, क्योंकि इन सब बातों का होना अवश्य है, परंतु अंत अभी नहीं है। यरूशलेम के विनाश से पूर्व मनुष्य प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रहे थे, सम्राटों की हत्या की गई, जो सिंहासन के ठीक निकट खड़े समझे जाते थे वे मार डाले गए। लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें थीं। मसीह ने कहा, इन सब बातों का होना अवश्य है, परंतु अंत, एक राष्ट्र के रूप में यहूदी जाति का अंत अभी नहीं है, क्योंकि जाति जाति के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होगा और भिन्न भिन्न स्थानों में अकाल और महामारियां और भूकंप होंगे। ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। मसीह ने कहा, जैसे ही रब्बी इन चिन्हों को देखेंगे वे उन्हें उन राष्ट्रों पर परमेश्वर के न्याय ठहराएंगे, क्योंकि वे उसकी चुनी हुई प्रजा को बंधुआई में रखे हुए हैं। वे घोषणा करेंगे कि ये चिन्ह मसीहा के आगमन के संकेत हैं। धोखा न खाना, ये उसके न्यायों का आरंभ है। लोगों ने अपनी ही ओर दृष्टि की है, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और न परिवर्तित हुए कि मैं उन्हें चंगा करूं। जिन चिन्हों को वे अपनी बंधुआई से मुक्ति के संकेत के रूप में प्रस्तुत करते हैं वे उनके विनाश के चिन्ह हैं। द डिज़ायर ऑफ एजेस 628।
66 ईस्वी में यरूशलेम की घेराबंदी में ये चिन्ह सम्मिलित था कि रोम ने पवित्र स्थान के प्रांगण में अपने ध्वज स्थापित किए। 66 से 70 की अवधि की घटनाओं पर यीशु की व्याख्या ने 70 ईस्वी के विनाश को उनके द्वितीय आगमन के साथ संरेखित किया और उनके द्वितीय आगमन के साथ एक चिन्ह संबद्ध है।
शीघ्र ही हमारी दृष्टि पूर्व की ओर आकर्षित हुई, क्योंकि वहाँ एक छोटा काला बादल दिखाई दिया था जो मनुष्य के हाथ के लगभग आधे के बराबर बड़ा था और जिसे हम सब जानते थे कि वो मनुष्य के पुत्र का चिन्ह था। द डे स्टार 1846।
66 से 70 ईस्वी की अवधि के इतिहास के आरंभ और अंत में एक ऐसा चिन्ह निहित है जो घेरेबंदी के आरंभ और नगर के विनाश से संबद्ध है और जो 587 ईसा पूर्व तथा 586 ईसा पूर्व में नेत्रों की अभिलाषा की मृत्यु के अल्फा और ओमेगा चिन्ह के साथ मेल खाता है। 1.5 वर्ष की घेराबंदी का इतिहास अंतिम दिनों के लिए एक चिन्ह है। यहेज़केल के इतिहास में दर्शाई गई मूर्ख कुंवारियों का समकक्ष बुद्धिमान कुंवारियों के इतिहास में मिलता है, जिन्होंने 66 ईस्वी में घेराबंदी के चिन्ह को देखा और सुरक्षित स्थान की ओर भाग गईं। 1.5 वर्ष की घेराबंदी वो चिन्ह है जो उपासकों के दो वर्गों को प्रकट करती है। एक वर्ग उस चिन्ह को समझेगा, दूसरा वर्ग, जिसे यशायाह द्वारा बहुतों के रूप में दर्शाया गया है, न देखेगा न सुनेगा।
बहुत और थोड़े।
तब राजा ने सेवकों से कहा, इसे हाथ पांव बांध कर ले जाओ और बाहरी अंधकार में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मत्ती 22:13-14। इस प्रकार जो अंतिम हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे अंतिम, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मत्ती 20:16।
देखना और सुनना।
यहेज़केल की पुस्तक में 5 अभिनय रूपक दृष्टांत हैं और 5 अवसर ऐसे भी हैं जब यहेज़केल ने प्रधानों और लोगों से बातें की।
ये दो साक्षी उन पांच मूर्ख कुंवारियों की पहचान कराते हैं जो देखने से इनकार करती हैं और सुनने से भी इनकार करती हैं। वे उस बढ़े हुए ज्ञान को देखने या सुनने से इनकार करती हैं जो तब प्रकट होता है जब यीशु, जो यहूदा के गोत्र का सिंह है, अपने भविष्यवाणीमय वचन की मोहरें खोलता है।
संसार देखेगा और सुनेगा।
हे समस्त जगत के निवासियों और पृथ्वी के रहने वालों, जब वह पर्वतों पर ध्वज उठाए तब तुम देखो, और जब वह तुरही फूंके तब तुम सुनो। यशायाह 18:3। और उस दिन बहरे पुस्तक के वचन सुनेंगे और अंधों की आंखें धुंधलेपन और अंधकार में से देखेंगी। यशायाह 29:18।
मेरी मूर्ख और जड़ बुद्धि प्रजा को कोई ज्ञान नहीं है।
मैं कब तक ध्वज को देखता रहूं और नरसिंगे का शब्द सुनता रहूं? क्योंकि मेरी प्रजा मूर्ख है, उन्होंने मुझे नहीं जाना। वे अविवेकी पुत्र हैं और उनमें कुछ भी समझ नहीं है। वे बुराई करने में चतुर हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। यिर्मयाह 4:21-22। ये याकूब के घराने में घोषित करो और यहूदा में इसका प्रचार करो, ये कहकर, अब ये सुनो, हे मूर्ख और निर्गुद्धि लोगों, जिनकी आंखें तो हैं पर वे देखते नहीं, जिनके कान तो हैं पर वे सुनते नहीं। यिर्मयाह 5:20-21।
एक बलवा ग्रही घराना।
और यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, यो कहता हुआ, हे मनुष्य के संतान, तू एक विद्रोही घराने के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिए आंखें तो हैं पर वे देखते नहीं, सुनने के लिए कान तो हैं पर वे सुनते नहीं, क्योंकि वे एक विद्रोही घराना हैं। यहेजकेल 12:1-2। इस कारण मैं उनसे दृष्टांतों में बात करता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते और ना ही समझते हैं, और उनमें यशायाह की वो भविष्यद्वाणी पूरी होती है जो कहती है, सुनते हुए तुम सुनोगे परंतु न समझोगे, और देखते हुए तुम देखोगे परंतु न जानोगे, क्योंकि इस प्रजा का हृदय मोटा हो गया है और उनके कान सुनने में भारी हो गए हैं, और उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली हैं, ऐसा न हो कि वे कभी अपनी आँखों से देखें और अपने कानों से सुनें और अपने हृदय से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूँ। परंतु धन्य हैं तुम्हारी आँखें, क्योंकि वे देखती हैं, और तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और धर्मी जनों ने उन बातों को देखने की अभिलाषा की जिन्हें तुम देखते हो, परंतु उन्हें नहीं देखा, और उन बातों को सुनने की जिन्हें तुम सुनते हो परंतु उन्हें नहीं सुना। मत्ती 13:13-17।
प्राचीन मार्ग।
यहोवा यों कहता है, मार्गों पर खड़े होकर देखो और प्राचीन मार्गों के विषय में पूछो कि भला मार्ग कहाँ है, और उसी में चलो, तब तुम अपने प्राणों के लिए विश्राम पाओगे। परंतु उन्होंने कहा, हम उसमें न चलेंगे। फिर मैंने तुम्हारे ऊपर पहरे वाले ठहराए ये कहते हुए, नरसिंगे की ध्वनि पर ध्यान दो। परंतु उन्होंने कहा, हम ध्यान न देंगे। यिर्मयाह 6:16-17।
1840 से 1844 का संदेश।
1840 से 1844 के बीच दिए गए सभी संदेशों को अब प्रभावशाली बनाया जाना है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी दिशा खो चुके हैं। ये संदेश सब कलीसियाओं तक पहुँचने हैं। मसीह ने कहा, धन्य हैं तुम्हारी आँखें, क्योंकि वे देखती हैं, और तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और धर्मी जनों ने उन बातों को देखने की अभिलाषा की जिन्हें तुम देखते हो परंतु उन्हें न देखा, और उन बातों को सुनने की जिन्हें तुम सुनते हो परंतु उन्हें न सुना। मत्ती 13:16-17। धन्य हैं वे आँखें जिन्होंने 1843 और 1844 में दिखाई गई बातों को देखा। संदेश दे दिया गया था, और इस संदेश को दोहराने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय की निशानियां पूरी होती जा रही हैं। समापन का कार्य अवश्य किया जाना चाहिए। थोड़े समय में एक महान कार्य संपन्न किया जाएगा। परमेश्वर की नियुक्ति के अनुसार शीघ्र ही एक संदेश दिया जाएगा जो बढ़कर एक ऊंचे शब्दघोष में परिवर्तित हो जाएगा। तब दानियेल अपने भाग में खड़ा होगा अपनी गवाही देने के लिए। मैन्यूस्क्रिप्ट रिलीजेस वॉल्यूम 21 437।
घिरे बंदी का चिन्ह।
यहेजकेल की पुस्तक में 5 बार ऐसे प्रसंग आते हैं जहां उसने एक दृष्टांत को अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया जिसे लोगों ने देखने से इनकार किया, और 5 बार उसने उन्हीं लोगों से बोलकर कहा जिन्होंने सुनने से इनकार किया।
अभिनय द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत और वाणी, इन दो साक्षियों को पांच मूर्ख कुमारियों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। अभिनय द्वारा प्रस्तुत दृष्टांतों में से एक, जो अध्याय चार में स्थित है, घेराबंदी के चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है, जो आने वाले विनाश की चेतावनी देता है। यहेज़केल का संदेश लौदीकिया के लिए संदेश है।
लौदीकिया के लिए दिया गया चिन्ह घेराबंदी का चिन्ह है और अंतिम दिनों की घेराबंदी का प्रतिनिधित्व कई साक्षियों द्वारा किया गया है। मसीह के दिनों के यहूदियों को दिया गया एकमात्र चिन्ह योना का चिन्ह था, जो वेल के पेट में तीन दिनों की एक अभिव्यक्त दृष्टांतात्मक क्रिया का प्रतिनिधित्व करता है।
तब शास्त्रियों और फरीसियों में से कितनों ने उत्तर देकर कहा, हे गुरुवर, हम तुझसे कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। परंतु उसने उत्तर देकर उनसे कहा, ये दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी चिन्ह ढूंढती है और इसे योना भविष्यत वक्ता के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह न दिया जाएगा, क्योंकि जैसे योना तीन दिन और तीन रात बड़ी मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र तीन दिन और तीन रात पृथ्वी के हृदय में रहेगा। मत्ती 12:38-40।
योना का चिन्ह।
योना का चिन्ह मृत्यु से पुनरुत्थान का एक अभिनय रूपक था। यूहन्ना उसी सत्य का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि उसे खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डाला गया और वो जीवित बाहर निकल आया। सिंहों की मांद में दानियेल और नबूकदनेस्सर की भट्ठी में वे तीन वीर मृत्यु से पुनरुत्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सब प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में पुनर्जीवित किए गए 144,000 का प्रतिनिधित्व करते हैं।
उद्धारकर्ता के विचार अब अतीत और भविष्य पर मनन करने से लौट आए। जब लोग अपने मनों पर पड़े प्रभावों के अनुसार और अपने पास उपलब्ध ज्योति के अनुसार जो उन्होंने देखा और सुना था उसका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहे थे, तब यीशु ने उत्तर देकर कहा, ये शब्द मेरे कारण नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए आया है। ये उसके मसीहत्व का परम प्रमाण था। पिता की ओर से ये संकेत था कि यीशु ने सत्य कहा था और वो परमेश्वर का पुत्र था। क्या यहूदी उच्च स्वर्ग की इस साक्षी से फिर भी मुरझाएंगे? उन्होंने एक बार उद्धारकर्ता से पूछा था, तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम देखकर विश्वास करें? मसीह की सेवकाई के समस्त काल में असंख्य चिन्ह दिए गए थे, तो भी उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली थीं और अपने हृदय कठोर कर लिए थे, ऐसा न हो कि वे आश्वस्त हो जाएं। लाजर के पुनरुत्थान का परम चमत्कार भी उनके अविश्वास को दूर न कर सका, वरन उसने उन्हें और भी अधिक द्वेष से भर दिया। और अब जबकि पिता बोल चुका था और वे किसी और चिन्ह की मांग नहीं कर सकते थे, उनके हृदय नम्र न हुए और उन्होंने फिर भी विश्वास करने से इनकार कर दिया। स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, 3:69।
लाजरस उस पुनरुत्थान का चिन्ह था जिसका अभिनय योना ने मछली के पेट में किया था। पुनर्जीवित लाजरस के संबंध में पिता की वाणी दिव्यता और मानवता के संयोग का प्रतिनिधित्व करती है, जो निस्संदेह मसीह का स्वभाव है, जिसने अपने ऊपर मानवीय देह धारण की। दिव्यता का मानवता के साथ ये संयोग 144,000 का ध्वज चिन्ह है और लाजरस पुनरुत्थान की उस सामर्थ्य का चिन्ह है जो सृष्टिकर्ता और सृष्ट प्राणी के मिलन को संपन्न करती है।
लाजर को जिलाए जाने के द्वारा बहुतों को यीशु पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया गया। ये परमेश्वर की योजना थी कि उद्धारकर्ता के आने से पहले लाजर मर जाए और कब्र में रख दिया जाए। लाजर को जिलाया जाना मसीह का सर्वोपरि चमत्कार था और इसके कारण बहुतों ने परमेश्वर की महिमा की। मैन्यूस्क्रिप्ट रिलीजेस, Vol. 21, 111।
लाजरस ने यरूशलेम में विजयी प्रवेश का नेतृत्व किया और वो पुनरुत्थान का जीवित चिन्ह था जिसका चित्रण योना द्वारा किया गया है।
लाजर, जिसकी देह कब्र में सड़न देख चुकी थी, परंतु जो अब महिमामय पुरुषत्व के सामर्थ्य में आनंदित था, उस पशु को आगे ले चला जिस पर उद्धारकर्ता सवार थे। द डिजायर ऑफ एजेस, 572।
विजय उत्सव पूर्ण प्रवेश एक्सेटर शिविर सभा के साथ मेल खाता है, जो 10 कुवारियों के दृष्टांत की अल्फा पूर्ति थी, और इस प्रकार योना तथा लाजर के चिन्ह को इस संदेश की उद्घोषणा, देखो दूल्हा आता है, कि ओमेगा तथा परिपूर्ण पूर्ति के साथ संरेखित करता है।
मेरा ध्यान प्रायः 10 कुमारियों के दृष्टांत की ओर आकर्षित किया जाता है, जिनमें से 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख। ये दृष्टांत अक्षरशः पूरा हुआ है और होगा, क्योंकि इसका विशेष अनुप्रयोग इसी समय के लिए है, और तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के समान ये पूरा हुआ है और समय के अंत तक वर्तमान सत्य बना रहेगा। रिव्यू एंड हेरल्ड, 19 August 1890।
योना, लाजरस और शमुएल स्नो का एक्सेटर शिविर सभा में देर से पहुंचना यहेजकेल के घेराबंदी के चिन्ह के अनुरूप है। लाजरस ने मसीह को गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश कराया।
अगस्त 1844 में एक्सेटर न्यू हैम्पशायर के शिविर सम्मेलन में बेट्स उन महत्वपूर्ण नेताओं में से एक था जब सच्ची आधी रात की पुकार पहली बार प्रस्तुत की गई थी। संयोगवश उस दिन प्रातःकालीन सभा में शिविर में प्रचार करने के लिए बेट्स को चुना गया था। वो अपने श्रोताओं को विश्वास योग्य बने रहने का आग्रह कर रहा था और शांत भाव से उन्हें ये आश्वासन दे रहा था कि परमेश्वर केवल उनकी परीक्षा ले रहा है कि वे विलंब के समय में हैं, और इसी प्रकार की बातें कह रहा था। तभी सैमुअल एस स्नो घोड़े पर सवार होकर शिविर में पहुंचा। अपनी बहन श्रीमती जॉन काउच के पास बैठते हुए स्नो ने अपने इस विश्वास को फिर दोहराया कि मसीह नियत समय पर प्रकट होगा। अत्यंत उद्वेलित होकर श्रीमती काउच ने उठकर ये घोषणा करते हुए श्रोताओं को चकित कर दिया, यहाँ एक व्यक्ति है जिसके पास परमेश्वर की ओर से एक संदेश है। लीरॉय फ्रूम, द प्रोफेटिक फेथ ऑफ आर फादर्स, वॉल्यूम 4, 549।
अप्रैल 1521 में मार्टिन लूथर घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली एक गाड़ी में बैठकर डाइट ऑफ वर्म्स की यात्रा पर गए, जहां उन्होंने पोपीय परंपराओं और रीति रिवाजों को अस्वीकार कर दिया और कहा, जब तक मुझे पवित्र शास्त्रों की साक्षी या स्पष्ट तर्क द्वारा आश्वस्त न किया जाए, मैं किसी भी बात से पलट नहीं सकता और न पलटूंगा, क्योंकि विवेक के विरुद्ध जाना न तो सुरक्षित है और न उचित। मैं यहीं खड़ा हूं, मैं और कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर मेरी सहायता करे, आमीन।
जिस प्रकार फरीसियों ने मसीह के विजयोत्सवी प्रवेश का विरोध किया, उसी प्रकार पोपीय अधिकारियों ने लूथर के प्रवेश का विरोध किया। तब लूथर ने अपना नाम बदल लिया, जो मुहरबंदी का एक प्रतीक है, और वो उस समय तक छिपा रखा गया जब वो नए नियम का जर्मन भाषा में अनुवाद कर रहा था। डाइट ऑफ वर्म्स में उसकी प्रस्तुति उस मध्यरात्रि पुकार का प्रतिरूप थी जिसने उस समय की कलीसिया राज्य अधिकारियों की ओर से मृत्यु फरमान को जन्म दिया, और इस प्रकार रविवार के विधान का भी प्रतिरूप ठहरी। यूंकर योर्ग के नाम से 10 महीने तक छिपे रहने के बाद अधिकारियों की ओर से आने वाला संकट बदल चुका था, और उसका मुख्य कारण भ्रष्ट चार्ल्स पंचम के सामने उपस्थित दो सैन्य समस्याएं थीं। वे दो सैन्य संकट फ्रांस और इस्लाम थे, जो समाजवाद और इस्लाम के उसी अशुद्ध गठबंधन का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आज मानव जाति का सामना कर रहा है।
पृथ्वी में परमेश्वर का कार्य युग युग में प्रत्येक महान सुधार या धार्मिक आंदोलन में एक उल्लेखनीय समानता प्रकट करता है। मनुष्यों के साथ परमेश्वर के व्यवहार के सिद्धांत सदा एक ही रहते हैं। वर्तमान के महत्वपूर्ण आंदोलनों का अपना समांतर अतीत के आंदोलनों में पाया जाता है, और पूर्व युगों में कलीसिया का अनुभव हमारे अपने समय के लिए अत्यंत मूल्यवान शिक्षाएं रखता है। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 343।
लाजर द्वारा संचालित एक गधे ने मसीह को यरूशलेम में पहुंचाया। घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली एक बग्घी लूथर को डाइट ऑफ वर्म्स तक ले गई, और एक घोड़ा स्नो को एक्सेटर शिविर सभा तक लाया। इस प्रकार गधे और घोड़े, जो दोनों इक्विडे कुल के इक्वस वंश के सदस्य हैं, को मध्यरात्रि की पुकार के संदेश के चिन्ह के रूप में चिन्हित किया गया।
हे सियोन की पुत्री, अत्यंत आनंद कर। हे यरूशलेम की पुत्री, जय जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आता है, वह धर्मी है और उद्धार लिए हुए है, दीन है और गधे पर, अर्थात गधी के बच्चे बछेड़े पर सवार है। जकरयाह 9:9।
आधी रात के पुकार के संदेश का चिन्ह गधे या घोड़े का आगमन है, जो दोनों इस्लाम के प्रतीक हैं। आधी रात के पुकार के सच्चे संदेश का चुना हुआ दूत घोड़े पर आया, जो मसीह के गधे पर आगमन के अनुरूप था। अंतिम दिनों में घेरा एलेन व्हाइट की उस पहचान की पूर्ति द्वारा चिन्हित होता है कि नैशविल नगर को अग्नि के गोले द्वारा आघात किया जाना है। घेराबंदी की शुरुआत नैशविल के अग्निगोलों से क्यों होती है? क्या इसका कारण यह है कि परमेश्वर के भविष्यवाणीमय वचन में गधे और घोड़े के द्वारा इस्लाम का प्रतिनिधित्व किया गया है?
स्मुर्ना।
सम्राट नीरो स्मुर्ना की कलीसिया की शुरुआत को चिह्नित करता है, जब सन 64 में रोम नगर को जला दिया गया था। ये तिथि उस मसीही कलीसिया के उत्पीड़न की शुरुआत को चिह्नित करती है जो 250 वर्ष की अवधि में संपन्न हुआ और जिसका समापन सन 313 में मिलान की आज्ञप्ति पर हुआ।
पशु की मूरत का गठन उस अल्फा वेमार्क का प्रतिनिधित्व करता है जो एक ऐसी अवधि का परिचय कराता है जिसका अंत उस ओमेगा वेमार्क के साथ होता है जिसका प्रतिनिधित्व शीघ्र आगामी रविवार वेधी पर पशु की छाप द्वारा किया गया है। इस अवधि की पहचान आज्ञप्तियों से आरंभ होने वाली के रूप में की गई है।
यदि पाठक उस शीघ्र आने वाले संघर्ष में प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियों को समझना चाहता है तो उसे केवल उन उपायों के अभिलेख का अनुसरण करना है जिन्हें रोम ने भूतकाल की सदियों में उसी उद्देश्य के लिए अपनाया था। यदि वो जानना चाहता है कि पोपवादी और प्रोटेस्टेंट संयुक्त होकर उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे जो उनके मत सिद्धांतों को अस्वीकार करते हैं, तो वो उस आत्मा को देखे जिसे रोम ने सप्त और उसके रक्षकों के प्रति प्रकट किया था। राजकीय फरमान, महासभाएं और लौकिक सत्ता द्वारा समर्थित कलीसियाई अध्यादेश वे सोपान थे जिनके द्वारा उस मूर्ति पूजक पर्व ने मसीही जगत में अपना आदरपूर्ण स्थान प्राप्त किया। रविवार पालन को प्रवर्तित करने वाला पहला सार्वजनिक उपाय वो विधि थी जिसे कॉन्स्टेंटाइन ने अधिनियमित किया। ईस्वी सन 321 पृष्ठ तर्पण के लिए परिशिष्ट टिप्पणी देखें। इस फरमान के अनुसार नगरवासियों को सूर्य के आदरणीय दिन विश्राम करना था, परंतु देहात के लोगों को अपने कृषि कार्य जारी रखने की अनुमति थी। यद्यपि ये वस्तुतः एक अन्य जातीय विधि थी, तथापि मसीहियत को नाम मात्र स्वीकार कर लेने के बाद सम्राट ने इसे लागू किया। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 574।
स्मिर्ना की कलीसिया से पर्गमोस की कलीसिया की ओर संक्रमण को चिन्हित करने वाला पहला राजकीय फरमान सन 313 का मिलान का फरमान था। वो उस प्रथम चरण का प्रतिनिधित्व करता था जिसने सन 321 के प्रथम रविवार व्यवस्था की ओर अग्रसर किया। यरूशलेम का विनाश रविवार व्यवस्था का प्रतीक है और दो भविष्यद्वाणी संबंधी साक्षी उस घेराबंदी की पहचान कराते हैं जो उस विनाश से पहले हुई थी। वे दो घेराबंदियां जिनका प्रतिनिधित्व क्रमशः ईसा पूर्व 587 में बाबुल की तीसरी घेराबंदी और सन 70 में रोम की दूसरी घेराबंदी द्वारा होता है, इस बात की पहचान कराती हैं कि रविवार व्यवस्था के मार्ग चिन्ह से पहले आने वाला मार्ग चिन्ह एक भविष्यद्वाणी संबंधी घेराबंदी है।
नबूकदनेस्सर ने यहोयाकीम के विरुद्ध घेरा डाला, फिर यहोयाकीन के विरुद्ध और अंत में सिदकिया के विरुद्ध। केस्तियुस ने सन 66 में घेरा डाला और उस चिन्ह को पूरा किया जो यीशु ने कलीसिया को दिया था, जैसे 587 ईसा पूर्व के तीसरे घेरे में यहेजकेल की पत्नी की मृत्यु का चिन्ह उपस्थित था। यरूशलेम के विनाश से पहले आने वाला मार्ग चिन्ह घेरा है और वह एक चिन्ह भी है। सन 321 के रविवार व्यवस्था से पहले आने वाला मार्ग चिन्ह मिलान का फरमान था, जहां एक ऐसी कलीसिया स्मिर्ना से, जिस पर कोई निंदा नहीं है, पेरगमुन में संक्रमण होता है जो समझौता कर चुकी कलीसिया का प्रतीक है।
अतः मिलान का फरमान भविष्यवाणी पूर्ण घेरेबंदी की शुरुआत है और वो एक चिन्ह भी है। ये उस बिंदु को भी चिन्हित करता है जहां 144,000 का लौदीकिया आंदोलन 144,000 के फिलाडेल्फिया आंदोलन में संक्रमण करता है।
फिलाडेल्फिया और स्मुर्ना प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं में केवल वे 2 कलीसियाएं हैं जिनके विरुद्ध कोई दोषारोपण नहीं है। ये तथ्य बदले में उस संक्रमण की पहचान कलीसिया संघर्षरत से कलीसिया विजयी तक के संक्रमण के रूप में करता है। वो संक्रमण मिलान की आज्ञप्ति के साथ मेल खाता है, जहां 144,000 का उत्तरकालीन आंदोलन वो 8वीं कलीसिया बन जाता है जो उन 7 में से है। फिलाडेल्फिया और स्मुर्ना ही वे केवल 2 कलीसियाएं भी हैं जो उन लोगों के साथ संघर्ष करती हैं जो अपने को यहूदी कहते हैं परंतु वास्तव में शैतान के आराधनालय के हैं।
313 का वो मार्ग चिन्ह 1844 में 12 से 17 अगस्त तक आयोजित एक्सेटर शिविर सभा के साथ भी मेल खाता है। जब वो शिविर सभा समाप्त हुई, तब वो संदेश 22 अक्टूबर 1844 को द्वार दंड होने तक संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी समुद्री तट पर ज्वार भाटे की लहर के समान फैल गया।
ज्वार भाटे की एक प्रचंड लहर के समान वह आंदोलन समस्त देश पर छा गया। नगर से नगर, गांव से गांव और दूरस्थ ग्रामीण प्रदेशों तक वह फैल गया, यहाँ तक कि परमेश्वर की प्रतीक्षारत प्रजा पूर्णतः जागृत हो गई। इस उद्घोषणा के सामने उन्मादिता वैसे ही लुप्त हो गई जैसे उगते हुए सूर्य के सामने प्रातःकाल का पाला। विश्वासियों ने देखा कि उनका संदेह और उनकी उलझन दूर हो गई है और आशा तथा साहस ने उनके हृदयों को प्रेरित किया। ये कार्य उन अतिरेकों से रहित था जो सदा प्रकट होते हैं जब परमेश्वर के वचन और आत्मा के नियंत्रक प्रभाव के बिना केवल मानवीय उत्तेजना होती है। अपने स्वरूप में ये उन आत्मदैन्य और प्रभु की ओर लौटने के कालों के समान था जो प्राचीन इसराइल में उसके सेवकों की ओर से दिए गए ताड़ना के संदेशों के पश्चात आते थे। इसमें वे विशेषताएं विद्यमान थीं जो प्रत्येक युग में परमेश्वर के कार्य को चिह्नित करती हैं। इसमें उन्मत्त उल्लास बहुत कम था, वरन हृदय की गहरी जांच, पाप का अंगीकार और संसार का परित्याग था। प्रभु से भेंट करने की तैयारी ही व्याकुल आत्माओं का बोझ थी। इसमें दृढ़ प्रार्थना और परमेश्वर के प्रति निष्कपटी समर्पण था। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 400-401।
22 अक्टूबर 1844 को द्वार का बंद होना शीघ्र आने वाली रविवार व्यवस्था का प्रतीक है, और 22 अक्टूबर के बंद द्वार से पहले जो मार्ग चिन्ह था वो एक्सेटर का शिविर सम्मेलन था। इसलिए एक्सेटर का शिविर सम्मेलन मिलान की राजाज्ञा के साथ मेल खाता है। ये मसीह के विजयी प्रवेश के साथ भी मेल खाता है।
मध्य रात्रि की पुकार तर्क वितर्क के द्वारा उतनी अधिक नहीं फैली, यद्यपि पवित्र शास्त्र का प्रमाण स्पष्ट और निर्णायक था। उसके साथ एक प्रेरक सामर्थ्य थी जो आत्मा को आंदोलित करती थी। वहां न कोई संदेह था, न कोई प्रश्न। मसीह के यरूशलेम में विजयोत्सव पूर्ण प्रवेश के अवसर पर वे लोग जो पर्व मनाने के लिए देश के सब भागों से एकत्र हुए थे, जैतून पर्वत पर उमड़ पड़े, और जब वे उस भीड़ में सम्मिलित हुए जो यीशु के साथ साथ चल रही थी, तब उन्होंने उस घड़ी की प्रेरणा को ग्रहण किया और इस जयघोष को और भी प्रबल करने में सहायक हुए। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, मैथ्यू 21:9। इसी प्रकार अविश्वासी भी जो एडवेंटवादी सभाओं में उमड़ आते थे, कुछ जिज्ञासा से और कुछ केवल उपहास करने के लिए, उस संदेश के साथ उपस्थित उस दृढ़ विश्वास उत्पन्न करने वाली सामर्थ्य को अनुभव करते थे, देखो दूल्हा आता है। स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी Vol. 4, 250।
मिलान का आदेश उस भविष्य सूचक घेराबंदी को चिन्हित करता है जिसका प्रतिरूप 587 ईसा पूर्व में नबूकदनेस्सर और सन 66 में सेस्टियुस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन दोनों घेराबंदियों ने क्रमशः 586 ईसा पूर्व और 70 में यरूशलेम के विनाश का परिणाम उत्पन्न किया। सेस्टियुस की घेराबंदी समाप्त हुई और 3.5 वर्ष बाद तीतुस के अधीन घेराबंदी फिर से आरंभ हुई। इस प्रकार एक ऐसी भविष्य सूचक अवधि प्रदान हुई जो एक अल्फा रोमी शासक से आरंभ होती है और एक ओमेगा शासक पर समाप्त होती है। वे 3.5 वर्ष पोप तंत्र द्वारा यरूशलेम के रौंदे जाने का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस शीघ्र आने वाले रविवार के कानून का भी, जब पोप तंत्र का घातक घाव चंगा हो जाएगा और वो फिर से 3.5 प्रतीकात्मक वर्षों के लिए राज्य करेगी।
परंतु जो आंगन मंदिर के बाहर है उसे छोड़ दे और उसका नाप न ले, क्योंकि वो अन्य जातियों को दे दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीनों तक पैरों तले रौंदेंगे। प्रकाशित वाक्य 11:2।
5:3-8 में और फिर आने वाले रविवार विधि के समय यरूशलेम को रौंदे जाने की प्रक्रिया आरंभ होती है। उन दोनों रविवार विधियों का प्रतिनिधित्व वर्ष 321 द्वारा किया गया था जब कॉन्स्टेंटाइन महान ने पहली रविवार विधि पारित की। 5:3-8 में परमेश्वर की कलीसिया को 3.5 वर्षों तक सताने रौंदने के लिए पोप सत्ता को सामर्थ्य दिया गया, जैसा कि सेस्टियस से टाइटस तक के इतिहास द्वारा निरूपित किया गया है। 5:3-8 में पोप सत्ता ने ओर्लियों की तृतीय परिषद में एक रविवार विधि पारित की। शीघ्र आने वाली रविवार विधि ये चिन्हित करती है कि कब पोप सत्ता को फिर से मंदिर को रौंदने सताने का सामर्थ्य दिया जाता है।
313 उस प्रथम आदेश की पहचान करता है जिसने 321 में प्रथम रविवार कानून को जन्म दिया। फिर 330 में साम्राज्य भविष्यवाणी के अनुसार पूर्व और पश्चिम में विभाजित हुआ। इस प्रकार 42 प्रतीकात्मक महीनों के पापीय उत्पीड़न की दूसरी अवधि के ओमेगा निष्कर्ष को चिन्हित करते हुए एक ऐसी उत्पीड़न और रौंदे जाने की अवधि जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्फा रविवार कानून से आरंभ हुई। और तीसरे स्वर्गदूत ने उनके पीछे पीछे आते हुए ऊंचे शब्द से कहा, यदि कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की उपासना करे और उसकी छाप अपने माथे पर या अपने हाथ पर ग्रहण करे, तो वो भी परमेश्वर के क्रोध की दाख मधु पिएगा जो उसके रोष के कटोरे में बिना मिलावट उंडेली गई है, और वो पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक से पीड़ित किया जाएगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की उपासना करते हैं और जो कोई उसके नाम की छाप ग्रहण करता है, उन्हें न दिन को चैन है न रात को। यहाँ पवित्र लोगों का धैर्य है। यहाँ वे हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु के विश्वास को मानते हैं। प्रकाशित वाक 14:9-12।
मैदान।
मिलान का लैटिन अर्थ है मैदान के मध्य, पूर्व और पश्चिम के बीच। सन 313 में पश्चिम के कॉन्स्टेंटाइन ने पूर्व के लिसिनियस के साथ एक गठबंधन की खोज की। ये आदेश पूर्व और पश्चिम को एक साथ लाने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करता था, और इस आदेश की पुष्टि एक संधि विवाह के द्वारा हुई, जब कॉन्स्टेंटाइन की सौतेली बहन कॉन्स्टेंटिया का विवाह लिसिनियस से हुआ। तो भी जैसे दानियेल अध्याय 11 में उत्तर के सेल्यूसिडों और दक्षिण के टॉलेमी के बीच पहला संधि विवाह हुआ था, वैसे ही ये विवाह भी असफल होने के लिए नियत था, क्योंकि वो पुरानी कहावत पूरी हुई जो कहती है, पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम है, और ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे।
वर्ष 330 सीधे दानियेल 11 के पद 24, 27 और 29 में प्रस्तुत किया गया है। ये 313 से 330 तक के 17 वर्षों को दानियेल 11 की भविष्यवाणी रेखा में ले आता है, और भविष्यवाणी की अनिवार्यता के अनुसार ये 313 में पूर्व और पश्चिम के उस संधि विवाह को उसी अध्याय में वर्णित प्रथम संधि विवाह के समानांतर के रूप में चिन्हित करता है।
दानियेल के 11वें अध्याय की भविष्यवाणी लगभग अपनी पूर्ण सिद्धि तक पहुँच चुकी है। इस भविष्यवाणी की पूर्ति में जो इतिहास घटित हो चुका है, उसका बहुत सा भाग पुनः दोहराया जाएगा। मैन्यूस्क्रिप्ट रिलीजेस संख्या 13:394।
एंटियोकस दो थियोस, जिसने 261 से 246 ईसा पूर्व तक राज्य किया, ने अपनी पहली पत्नी लाओडी के पहली को त्याग कर मिस्र के टॉलेमी दो फिलाडेल्फस की पुत्री बेरेनिके से विवाह किया। ये विवाह 252 ईसा पूर्व में द्वितीय सीरियाई युद्ध को समाप्त करने वाली शांति व्यवस्था का एक भाग था। इसके पश्चात जब 324 में कॉन्स्टेंटाइन ने लाइसिनियस को पराजित किया, तब वो विवाह संबंध भी समाप्त हो गया, जैसे एंटियोकस और बेरेनिके का विवाह भी समाप्त हुआ था जब 246 ईसा पूर्व में पहली पत्नी लाओडीके ने एंटियोकस को विष देकर मार डाला। वो विवाह जिसने द्वितीय सीरियाई युद्ध के अंत को चिन्हित किया था, और एंटियोकस की हत्या तथा उसके बाद बेरेनिके, उसके बच्चे और उसके मिस्री अनुचर मंडल की हत्या ने तृतीय सीरियाई युद्ध के आरंभ को चिन्हित किया। 313 की संधि विवाह ने सताव के उस काल का अंत किया जिसका प्रतिनिधित्व स्मुर्ना की कलीसिया करती है, और समझौते के उस काल का आरंभ किया जिसका प्रतिनिधित्व पर्गमुस की कलीसिया करती है।
सेल्यूकिड इतिहास के आरंभ में हुआ विवाह सेल्यूकिड साम्राज्य के अंत में हुए उस संधि विवाह का प्रतिरूप था, जब एंटियोकस द ग्रेट ने अपनी पुत्री क्लियोपेत्रा पहली को टॉलेमी 5 एपिफनीज को दिया। ये विवाह 193 बीसी में राफिया में हुआ, परंतु ये गठबंधन शीघ्र ही समाप्त हो गया, जैसा कि उत्तर के राजा और दक्षिण के राजा के बीच हुआ पहला संधि विवाह भी समाप्त हो गया था। सेल्यूकिड साम्राज्य के अल्फा और ओमेगा संधि विवाह दानियेल 11 के भविष्यद्वाणी संबंधी इतिहास में बाद में उल्लिखित उस संधि विवाह का प्रतिरूप हैं, जब 40 बीसी में ऑक्टेवियन ने अपनी बहन ऑक्टेविया माइनर को मार्क एंटनी को दिया। मार्क एंटनी और ऑक्टेवियन रोम के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों पर आधिपत्य के संघर्ष में थे, जो 44 बीसी में जूलियस सीजर की हत्या के साथ आरंभ हो गया था। 40 बीसी में उस विवाह के समय ब्रुंडिसियम की संधि स्थापित की गई, और 8 वर्ष बाद 32 बीसी में मार्क एंटनी ने औपचारिक रूप से ऑक्टेविया को तलाक दे दिया, और 31 बीसी में एक्टियम के युद्ध को उत्पन्न कर दिया, जहां मार्क एंटनी और क्लियोपेत्रा, अंतिम क्लियोपेत्रा, दोनों का अंत हो गया।
सेल्यूसिड साम्राज्य की ओमेगा वैवाहिक संधि ने पहली क्लियोपेत्रा को प्रस्तुत किया, जो अंतिम क्लियोपेत्रा का प्रतिरूप थी, जिसकी वंश परंपरा ने 40 ईसा पूर्व में रोमी साम्राज्य की भविष्य सूचक अल्फा वैवाहिक संधि तक पहुँचने वाली कड़ी का निर्माण किया। वे तीनों संधि विवाह मिलान के फरमान की संधि विवाह का प्रतिरूप हैं। मिलान का फरमान एक भविष्य सूचक घेरेबंदी के आरंभ को चिन्हित करता है। ये एक भविष्य सूचक चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक धर्मी कलीसिया से अधर्मी कलीसिया की ओर संक्रमण को चिन्हित करता है, और इस प्रकार 7 में से 8वें अस्तित्व की पहेली के साथ सामंजस्य रखता है। ये ऐसी संधि विवाह को चिन्हित करता है जो एक युद्ध को समाप्त करती है, जब तक कि उस संधि विवाह का तलाक न हो जाए,
और इस प्रकार एक युद्ध के आरंभ को चिन्हित करती है। दो रोमी विवाहों में तलाक साम्राज्य के एकीकरण को उत्प्रेरित करता है। 313 एक्सेटर शिविर सभा को भी चिन्हित करता है, जहां आधी रात की पुकार के संदेश की उद्घोषणा आरंभ होती है और 22 अक्टूबर के बंद द्वार तक ले जाती है।
हम अगले लेख में इन सत्यों पर आगे विचार करेंगे।